ओम शांति। जंगल का एक बंदर शहर में घुस आया और उसने देखा ये मनुष्य कितने एडवांस हो गए और हम कहाँ रह गए आदिवासी, और हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है मनुष्य के समाज में तो, और किस तरह से हमारा उदाहरण दिया जाता है। और उसने ये भी सुना कि मनुष्यों में कितना संयम है, हम में तो संयम ही नहीं, जो मर्जी चाहे खा लेते। और वो कुछ प्रवचन में भी गया और कथाकार की अच्छी अच्छी बातें भी उसने सुनी और उसने संकल्प कर लिया कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए हमारे समाज में। कौन से समाज में? बंदरों के समाज में। और वो जाता है, सभा आयोजित होती है और ये निर्णय लिया जाता है कि मनुष्य सोचते हैं हम में जरा भी संयम नहीं है, हम जरा भी धार्मिक नहीं है, अब हमको ये दिखाना है उनको कि हम भी धार्मिक हैं और हम में भी संयम है। इसलिए सर्व सहमति से ये निर्णय किया गया, एक दिन सभी बंदर उपवास करेंगे, कोई भी कुछ नहीं खाएगा। आत्मा समझ बाप को याद कर, केवल भगवान की याद में रहेंगे। तो सभी बंदर ध्यान मग्न अवस्था में और तपस्या में लग जाते हैं। एक छोटा सा बंदर होता है छोटू नाम का, और जब तपस्या भट्टी चालू रहती है किसकी? बंदरों की, तो वो बंदर एक केला लेके आ जाता है। उसकी मां कहती है, आंख दिखाती है पहले, केला छोड़ो, मौन भट्टी चालू है और सबका उपवास है, तुमने केला हाथ में क्यों रखा? वो कहता है, हाथ में रखा है मम्मी, खाया थोड़ी है। और जब इन दोनों की बातचीत चलती रहती है तो जो मुख्य होते हैं इंचार्ज बंदरों के हेड, वो कहता है इधर क्या हो रहा है? वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहता है नहीं कुछ तो हो रहा है, बताओ। वो कहता है मेरा ये जो बेटा है उसने हाथ में एक केला ले लिया है। तो बेटा कहते हैं केला हाथ में लिया है, खाया थोड़ी है, तो उपवास तो जारी है और तपस्या भी जारी है। और इस पर एक और एक मीटिंग होती है कि क्या यह सही है या गलत, और सर्वसहमति से पारित होता है कि हाथ में केला रखा जा सकता है क्योंकि खाया तो नहीं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि तपस्या तो जारी है। थोड़ी देर के बाद वो छोटू केला को छीलता है। उसकी मम्मी कहती है क्या कर रहे हो तुम? वो कहते केला को छीला है, खाया थोड़ी है, तपस्या तो जारी है ना, उपवास भी चालू है। वो इंचार्ज पूछते क्या चालू है वहां पर? वो कहते इसने अब ऐसा कर दिया, क्या किया जाए? तो वो भी सोचते तर्क तो बहुत अच्छा है कि खाया तो है ही नहीं ना, केवल छील के रखा है, तो चलेगा ये तो ठीक है। तो सभी केले, सभी बंदरों के हाथ में केला और सब छील के रखते, खाता कोई नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि उपवास है, धर्म का संबंध है, प्रश्न है। थोड़ी देर के बाद वो जो छोटू होता है वो केला को मुंह में ले लेता है। मम्मी कहती है ये क्या किया तुमने? वो कहता है खाया नहीं, यहां तक है बस। तो पूछा जाता है क्या किया जाए, क्या ऐसे रख सकते हैं मुंह में? खाना नहीं है, मुंह में रख सकते हैं क्या? तो वो इंचार्ज उनके मुखिया कहते हैं बात तो फिर भी तर्क संकित है क्योंकि उपवास तो जारी है ना, खाया थोड़ी है, केवल रखा है। और थोड़ी देर के बाद वो कहते ये ठीक है चलेगा, और सभी बंदर मुंह में केला रखते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो पेट में कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। बंदरों को बहुत खुशी होती है, एक नया नियम पता चला कि कोई चीज इस तरह मुंह में रखते ही वो अंदर चली जाती है, इच्छा न होते हुए भी। तो ऐसी ये बंदरों की कहानी है, चीजें हमने खाई नहीं है, कुछ कुछ हाथ में रखी है बस, केवल छील के रखी है, अंदर थोड़ी गई है, और केवल मुंह में रखी है, पर अंदर कब चली जाए पता नहीं। मोबाइल तो बस हाथ में, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हाथ में, बाकी हम कुछ नहीं करते। इस पर नेट चालू है पर हम कुछ नहीं करते, और धीरे धीरे वो पेट में चला जाता है। संसार के सभी आकर्षण, संसार के सभी प्रलोभन सूक्ष्म रीति से आते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, पर धीरे 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 अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किसी से दोस्ती कर ली, किसी को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही बना दिया इस ब्राह्मण परिवार। नाम सेवा, अंदर से प्यार मोहब्बत और दोस्ती, और धीरे 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 कहां से कहां पहुंच जाती है आत्मा। तो हमने अपने हाथ में क्या रखा है, क्या हम खा रहे हैं, कौन से सूक्ष्म आकर्षण है और प्रलोभन है जिनको हम डिनाय कहते हैं, नकारते हैं, परंतु वो हमारी चेतना का हिस्सा बन चुके हैं, और वो सारे अनैतिक सुख, लौकिक इच्छाएं और लौकिक तृष्णाएं आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं। कख का चोर सो लख का चोर। हमने तो थोड़ा ही किया, ज्यादा कहां किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा 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 और हथौड़ा। एक दिन क्या लग जाता है, हथौड़ा। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी। सभी सेंटरों पर वो चित्र लगा है बाप दादा का, धर्मराज का रूप देखा होगा ना, कई सेंटरों पर लगा हुआ है, सफेद। इस ब्राह्मण जीवन में अपवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग। बच्चे कहते बाबा हमने थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं। थोड़ा नहीं बहुत है, कान खोल कर सुनो। तो आत्मा इन सभी बातों से भारी हो जाती है, विकर्म कर करके, थोड़ा थोड़ा खा के, थोड़ा थोड़ा अंदर ग्रहण करते 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 इतनी भारी हो जाती है, इतना वेट बढ़ जाता है कि फिर दुख का ही अनुभव होता है। ब्राह्मण जीवन में दुख का अनुभव। भगवान मिला परंतु सुख नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाके 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 आत्मा बहुत भारी बन गई है। क्या हम करें जिससे आत्मा फिर से उस लाइटनेस में आ जाए। कई मुरलियां चली है जिसमें बाबा ने कहा है वेट कम करो। किसका? आत्मा का। किसका वेट है? विकर्मों का, पाप का। तो हमें फिर से डबल लाइट बनना है, लाइट भी नहीं डबल लाइट। बहुत हल्का जीवन, हल्का हो, भारीपन ना हो, जो भी करे हल्केपन से करे। तो ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे हमने डबल गार्ड और अटेंशन की बातें देखी दिनचर्या की 7-8, उसी तरह लाइटनेस की भी ऐसी 7-8 बातें हैं कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन खुशी खुशी बीते। बाबा ने तो यहां तक कहा है अगर कोई सेवा है और उस सेवा में खुशी खत्म हो जाती है तो सेवा को छोड़ दो, खुशी को नहीं छोड़ो, यहां तक कहा है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमको भारी कर देती है, और क्या हम करें कि जिससे हम डबल लाइट रहे या हल्के रहे जीवन में। तो कौन से तल है जहां पर हम भारी होते हैं? सबसे पहला है संकल्प, हमारे विचार हल्के होते जाए। और सबसे ज्यादा हल्के विचार है पवित्रता के, सबसे ज्यादा हल्के विचार है स्वमान के, शुभ भावना शुभ कामना के, और सबसे ज्यादा भारी करने वाले जो विचार है वो है बदला, ईर्ष्या, नफरत, उससे भी ज्यादा विकार, बेचैन कर देता है काम व्यक्ति को। अपने विचारों को हल्का करते जाना है, उसके लिए विचारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा मुरलियों के चिंतन से। विचारों में इतना भारीपन है, संकल्पों में भारीपन है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, व्यर्थ है, ईर्ष्या है, दृष्टि ही विकारी है और वो भारी करती है। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याऊ न आंधड़ास बरामी, उससे तो मैं अंधा ही ठीक हूं संत कहता है। तो अपने विचारों को हल्का करना है, कैसे करेंगे? ज्ञान से, ज्ञान के अध्ययन से, ज्ञान के चिंतन से। और हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। सबसे पहला तो मुरली है साकार, दूसरा है अव्यक्त वाणी, तीसरा है मैगजीन। ज्ञानामृत कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत लोग पढ़ते हैं, पर अभी लक्ष्य रखना है कि हर मास का ज्ञानामृत पहले 7 दिन या 15 दिन में पढ़ के हो जाना चाहिए पूरा के पूरा, क्योंकि उसमें बहुत सारी आत्माओं के अनुभव होते हैं। एक अभी अभी हमने अनुभव सुना, शायद इसी ज्ञानामृत में है, एक बहन किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, सब कुछ था, फिर फ्रॉड हो गया और उसको जेल हो गई। वो जेल में चली गई और वहां उसको ज्ञान मिला। जेल में चिंता थी, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको घर से निकाल दिया गया, पति नहीं है, इतनी चिंता, इतना टेंशन, और उसमें कोई ब्रह्मा कुमारी बहन उस जेल में गई और उसको ज्ञान सुनाया और वो एकदम से निश्चय बुद्धि हो गई। अब कहती है कि मैं जेल में हूं, इंतजार कर रही हूं कि कब मैं यहां से छूटूंगी और कब मधुबन जाऊंगी, कब मैं सेवा केंद्र देखूंगी। अभी सेवा केंद्र भी नहीं देखा है, मधुबन तो दूर की बात, इंतजार चल रहा है कि कब इस कारागार से निकलूंगी और जाऊंगी सेंटर पर, बहनों से मिलूंगी, मधुबन में जाऊंगी, कितना इंतजार है। तो ये सारे अनुभव कहां से पता चलेंगे? पढ़ने से, अध्ययन। इसको कहते हैं स्वाध्याय। आपके पास डायरी होगी, उसमें ब्राह्मणों की दिनचर्या है लिखी हुई। किसके पास है डायरी? टाइमिंग लिखा है 4 से 5, 4:45 अमृत वेला है किसके पास? वो डायरी में देखो दोपहर में क्या लिखा है, दोपहर में कौन सा समय है? स्वाध्याय। दोपहर में क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात पढ़ाई। एक है क्लास स्टडी, एक है होम स्टडी, एक है क्लास वर्क, एक है होमवर्क। जब भी समय मिले किताबें पढ़ना है। पहला साकार मुरली, दूसरा अव्यक्त मुरली, तीसरा मैगजीन्स, ज्ञानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, या कुछ हो, अमृत कुंभ मराठी में आता है शायद, या बंद हो गया है। उसके बाद में यज्ञ की सारी किताबें, लिटरेचर, बिजी रहना है। और दूसरा लिखना, रोज एक टॉपिक पर लिखना है जो लिख सकते, मुरली से टॉपिक उठाना है और उसके ऊपर लिखना, जैसे पवित्रता लिखना उसके ऊपर, जैसे किसी मैगजीन में या अखबार में भेज रहे हैं। तो पढ़ने की और लिखने की आदत डालनी है सभी को, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भागेगी, व्यर्थ में भागेगी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी बहू, उसकी सास, उसकी ननद, यही चर्चा चलती है। तो संकल्पों को अगर हल्का बनाना है तो किससे बनाएंगे? ज्ञान से। ज्ञान प्रकाश है। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? फर्स्ट 15 डेज में ज्ञानामृत पूरी पढ़ के हो जाना चाहिए। अब कैसे टाइम निकालेंगे वो आपके ऊपर है, समय को चुराना पड़ता है। समय को क्या करना होता है? चुराना पड़ता है। कभी कभी हमने अपने ही जीवन में देखा है, एक ही दिन में तीन क्लासेस, तीन अलग अलग ऑडियंस, एक शिविर वाले जो एकदम नए हैं, टॉपिक दूसरा, शाम को कॉन्फ्रेंस वाले विंग्स, टॉपिक दूसरा है, एजुकेटेड लोग हैं, और रात को भट्टी वाले जो खास भट्टी करने आए हैं। एक ही दिन में तीन टॉपिक, तीन अलग अलग ऑडियंस, और ऐसा भी नहीं कि हम खाली बैठे, इधर ओपीडी चालू है, इधर इमरजेंसी चालू है, इधर आईसीयू चालू है, इधर सब कुछ चालू है। कभी कभी लगता है थोड़ा सा इधर से ये हो जाए और आराम मिल जाए तो अच्छे से प्रिपरेशन करके कुछ कहे, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के बोलना अर्थात अपना भी टाइम वेस्ट और दूसरों का भी टाइम वेस्ट। और हमने अपने ही अनुभव से एक ही बात सीखी कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, चुराना है समय को। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं बहुत बिजी हूं, पढ़ते रहना है, चिंतन करते रहना है। कई बार ऐसा हुआ है कि फोन जो आता है 10 बजे फोन आता है जबकि सब सेवाएं चालू है, ओपीडी चालू है, पेशेंट चालू है, और कहते हैं शाम को क्लास है शांतिवन। वो क्लास की तैयारी करने का टाइम ही नहीं है, ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं उस कार में बस में बैठते बैठते तैयारी। कितनी बार ऐसा ही हुआ है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इधर क्या हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। फोकस ज्ञान पर और योग पर, बस, तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। माइंड निरंतर बिजी रहे कुछ ना कुछ सोचने में ज्ञान युक्त, तो ही होगा। तो संकल्पों को यदि लाइट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना, लिखना, चर्चा करना, ये काम सबको करना पड़ेगा, तो ही विचार लाइट होंगे। और दूसरा है उसी के साथ जुड़ा हुआ स्पिरिचुअल ड्रिल्स, अलग अलग ड्रिल करते रहना दिन भर। पहले संकल्प लाइट, उसके बाद में दूसरा है बुद्धि लाइट, बुद्धि पर बोझ न हो। और जैसे मन पर बोझ होता है, बुद्धि पर भी बोझ होता है। कौन सा बोझ हो जाए बुद्धि पर, कौन सा बोझ होता है, यादें, किसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। भूले नहीं है, 10 साल हो गए अब तक भूले नहीं। यहां तो कईयों को माफ करना है और कईयों से माफी मांग के हिसाब चुकतू करके आगे निकल जाना है। किस किस को कहेंगे तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था, तुमने मुझे वैसा क्यों बोला था। और ये अभ्यास हमको रोज करना है। कौन सा अभ्यास, आत्माओं से माफी मांग लेनी और क्या करना, उन्हें माफ कर देना जो कुछ भी किया अच्छा हुआ। तो ये अभ्यास हम अभी अभी करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक बार। जब तक बुद्धि लाइट नहीं होती है, बुद्धि योग नहीं होगा। शरीर स्थिर, आंखों के सामने एक विशाल पर्दा है और इस पर्दे पर मुझे अपने जीवन के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वो सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मुझे दुख दिया, धोखा दिया, अपमान किया, अपशब्द बोले, कटु व्यवहार किया, सताया, मेरी निंदा की, ग्लानी की, असहयोग दिया, आज मैं आत्मा मास्टर रहम की सागर इस सृष्टि की पूर्वज आत्मा इन सभी आत्माओं को माफ करती हूं। इन्होंने जो कुछ किया मेरा ही हिसाब था। इन सब के प्रति रहम का भाव, अज्ञान में थी, परवश थी, अब किसी के प्रति मेरे मन में जरा भी घृणा और नफरत नहीं। इन्हीं बातों ने मुझे भारी कर रखा है। मैं इन सभी आत्माओं को बेशर्त माफ करती सब आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत दुख दिया, कटु शब्द बोले, जिनका अपमान किया, निंदा की, उन्हें सहयोग नहीं दिया, गलत व्यवहार किया, उन पर कलंक लगाए, बहुत क्रोध में है वो सभी आत्माएं। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सच्चे दिल से मैं इन सभी आत्माओं से माफी मांग रहा हूं। देख रहा हूं उनका क्रोध शांत हो रहा है, उनमें भी प्रेम उत्पन्न हो रहा है और मेरा मन बुद्धि शांत और बोझ रहित। मन पर कोई बोझ नहीं है, मैं हल्की आत्मा हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। ओम शांति। अभ्यास रोज करना है, करेंगे सभी? कितना दिन करेंगे? अगले 6 मास। रोज अमृत वेला उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो कि जिनको हमने बहुत दुख दिया है, जीना मुश्किल कर दिया जिनका, बहुत कटु शब्द बोले, दिल दुखाया। हो सकता है वो बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो सकता है, पर किसी एक आत्मा की भी हमारे प्रति अगर घृणा है इस संसार में तो हम संपन्न नहीं बन सकते, और हमारे मन में यदि किसी एक के प्रति घृणा है तो हम फिर भी संपन्न नहीं बन सकते। और दूसरा अभ्यास, जिन्होंने हमको सताया उनको क्या कर देना है? माफ। क्यों? वो सताते रहे और हम माफ करते रहे, क्यों माफ कर दे? क्यों माफ कर दे? हाँ, हिसाब है, और क्यों माफ कर दे आत्माओं को? हम दाता के बच्चे, हम देने वाले, इसके लिए माफ कर दे, और क्यों माफ कर दे? हम रहमदिल बाप के बच्चे, इसके लिए हम बाप समान रहमदिल है, जैसे बाप रहमदिल है हम भी रहमदिल है। कोमलचित अतिदीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। वो बिना कारण के, कॉजलेस मर्सी है, बिना कारण रघुनाथ कृपाला, वो बिना कारण के रहम करता है, इसलिए हम भी रहम दिल बाप की संतान है। अल रहमान अल रहीम उसको कहा है इस्लाम में, इसलिए माफ कर दे। और हाँ, परमात्मा आज्ञा, ये सबसे बड़ी श्रीमत है। भगवान कह रहा है माफ कर दो, ये मैं कहता हूं तुमसे माफ कर दो, इसके लिए किसने कुछ भी किया हो वो वास्तव में हमारा ही तो हिसाब था उसके साथ। माता है, बाबा से कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है। बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा। लंदन में एक साधु को जेल हो गई, मर्डर, 28 साल की जेल। 21 साल के बाद पता चला जिसने खून किया था कोई दूसरा है, तो साधु को कहा अब आप बाहर आ जाओ। उसने कहा मैं इधर ही ठीक हूं, मेरी अच्छी साधना चल रही है जेल में, और रही बात खून की, तो वो तो मुझे पहले से ही पता है कि मैंने किसी का खून कभी किया ही नहीं, और फिर भी मुझे सजा हुई, जरूर किसी और जन्म का पाप होगा। कुछ भी दोष नहीं है, उसके बाद भी ऐसा हुआ, किसी और जन्म का होगा। गुजरात में एक कन्या थी, और इतनी अच्छी कन्या थी वो, उसमें वो सारे दैवी गुण, सारे लक्षण थे, और सब सेंटर वालों को, सबको बहुत प्यारी थी वो, और अभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाने वाली थी, इतनी अच्छी एक कन्या। अचानक एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस करते करते ट्रेन आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाती है और खत्म, एक सेकंड में डेथ। बहुत पुरानी कहानी है। संदेशी को बाबा के पास भेजा जाता है, ये क्या हिसाब है, इसने क्या पाप कर दिए थे? ये तो ऐसी कन्या थी कि सबको सुख देने वाली थी, हर सेवा खुद करने वाली थी, निरंकारी थी, इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो बाबा ने कहा था संदेश में कि बच्ची बाप को इतनी अधिक प्यारी थी कि उसके पूर्व जन्म के जो विकर्म थे बाबा ने एक सेकंड में भस्म कर दिए, अब उसका अगला जो जन्म होगा कुछ और होगा और बहुत अच्छा होगा। तो हमें पता नहीं कौन से जन्म के कौन से पाप और विकर्म हमारे सामने है, इसके लिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। एक ऐसी विदेश की बहन का उदाहरण है, एक वो जो बहन थी, एक युवक ने दुष्कर्म किया और वो बहन कहीं और चली गई, फिर पढ़ाई की और डॉक्टर बनी और सर्जन बन गई, और एक रात एक इमरजेंसी केस आई उसके हॉस्पिटल में, एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है, और वो देखती है उसको तो ये तो वही है, अब उसके सामने प्रश्न होता है, इसको ऑपरेशन करूं, इसको बचाऊं या मरने दूं। उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं अब। चर्च जाती है, क्रिश्चियन कहानी है, चर्च में जीसस क्राइस्ट का की तस्वीर लटकी है और वो पूछती है कि जीसस व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। और अचानक उसके सामने एक दृश्य आ जाता है, वो जीसस क्राइस्ट वहां से अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वो आ जाती है वहां पे खुद। और जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है उन सभी लोगों को जो उसको सूली पर चढ़ाते हैं और उस पर थूकते हैं, हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसकी, कहते हैं ये है ईश्वर पुत्र, कहां है तेरा ईश्वर, बचा तो नहीं रहा है तुझको। तब जीसस क्राइस्ट कहता है, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, हे प्रभु इनको माफ कर दे क्योंकि इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। उस फोटो में वो बहन अपने आप को देखती है कि उसको माफ कर दो। उसको उत्तर मिल जाता है, वो उसको ऑपरेट करती है, वो ठीक होता है और फिर जीवन भर वो उसका एहसान मंद रहता है और उसके लिए बहुत कुछ करता है। क्षमा, अपराधी का सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा। क्षमा से ही सबसे बड़ा दंड है। हम किसी को जज ना करें, जिसके साथ जो होना है वो होगा, जिसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलेगी जरूर। हम लॉ अपने हाथ में ना उठाएं, मैं दंड दूंगा, उसने मेरे साथ ये किया है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, जो होगा उसकी इच्छा से होगा, छोड़ दो। तो बुद्धि भारी हुई है क्योंकि बुद्धि में स्मृतियां है बहुत सारी, लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम नहीं छोड़ेंगे उनको, बदले का सूक्ष्म भाव है। इंतकाम, ये इंतकाम की आग जलाती है बदले की। इसके लिए क्या कर देना है? आत्माओं को माफ कर दो और क्या करो? माफी मांग लो। और ये काम केवल एक दिन का नहीं है, रोज करना है। रोज अमृत वेला लास्ट 5 मिनट्स, 4:40 से 4:45 लास्ट 5 मिनट्स जो है वो ये काम करना है। आत्माओं को इमर्ज करना, उनको माफ करना, आत्माओं को इमर्ज करना, उनको उनसे माफी मांगना डेली। तीसरा है संस्कार। संस्कारों को भारी किसने किया है? आदतों ने। रिपीटेड विकर्म, बार 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 पाप करने की वजह से पक्का संस्कार बन गया है, आदत बन गई है। अगर अपने संस्कारों को हल्का करना है तो अभी नए संस्कार क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हमको हल्का करें। देखना है मेरे जीवन में ऐसी कौन सी एक आदत है जो अब तक चल रही है और जो श्रीमत के विरुद्ध है। क्या देखना है? ऐसी वो कौन सी एक आदत, लत, एडिक्शन, संस्कार चल रहा है जो कि श्रीमत नहीं है। बाबा ने बिल्कुल जिसके लिए मना किया है फिर भी हम कर किए जा रहे हैं। किसी में इतना मोह है, इतना मोह है, इतना मोह है कि बस उसको जरा कुछ होता है तो इधर हलचल होती है, उधर कुछ होता है इधर दर्द होता है, उधर बेटी को कुछ हुआ इधर मां को कुछ हो रहा है। यहां तो पाठ पक्का करना है नष्ट मोह का। गुजरात में दो माताएं थी, दोनों के पति की डेथ हो गई, दोनों ज्ञानी थी, सारे लोग परिवार वाले बस्ती गांव खानदान उनको समझाने आ रहे हैं पर उनको कोई दुखी नहीं। वो कह रही थी ठीक है आत्मा है, शरीर छोड़कर चली गई। लोग रो रहे, अरे तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हारा क्या होगा, जो होगा बाबा देखेगा। उनको कोई दुखी नहीं, और जो दुनिया वाले हैं या ब्राह्मण परिवार वो भी थोड़ा दुख कर रहे हैं, अब तुम्हारा कैसा होगा। और वो एकदम अचल डोल। ऐसी भी आत्माएं हैं। हमने हॉस्पिटल में इतने सारी आत्माओं को शरीर छोड़ते हुए देखा है, ब्राह्मण आत्माएं, और देखा कुछ कुछ आत्माएं इतनी नष्ट मोह है, परिवार वाले कुछ नहीं उनको। पिताजी गए, ठीक है गए, माताजी गई, गई, इतने नष्ट मोह है। जरूर कोई तो मोह है, कोई तो आदत है जो भारी कर रही है। मेरे बाद इन सब का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मैं चला जाऊं तो मेरे पति पत्नी का बच्चे का क्या होगा, क्या होगा? अच्छा ही होगा, तुम ही बाधा हो, हट जाओ, तुम्हारी वजह से सब प्रगति रुकी हुई है। मैं चला जाऊंगा तो मेरा डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? अच्छा है, हटो, तुम्हारे बाद जो आने वाला है ना, तुमसे दो गुना अधिक सक्षम है। क्या किसी की वजह से कुछ रुका है क्या? ब्रह्मा चला गया, यज्ञ रुक गया, दादी प्रकाश में नहीं चली गई, यज्ञ रुका क्या? किसी की वजह से कुछ नहीं रुका है, संसार चालू रहेगा। हम सोचते हैं कि मैं अगर चला जाऊं तो मेरे बच्चे बीबी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। वो शायद आचार्य अरविंद के बारे में या किसके बारे में बताते हैं, अरविंद घोष, इतना वैराग, इतना वैराग आ गया, और पत्नी अभी डिलीवरी हो रही है, पत्नी की बच्चा हो गया और पत्नी मर गई, और उनको इतना वैराग अंदर से, बस संसार छोड़ के अब संन्यास लेने जाना है, अब ये बच्चे का क्या करूं? वो देखते हैं एक छिपकली ऊपर से गिरती है और उसके टुकड़े होते हैं, उसमें से अंडे निकलते हैं, और वो अंडे में से वो निकलता है छिपकली या कुछ और वो उड़ने लगता है। उसको लगता है अब मुझे किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, जिसने जन्म दिया ना वो देखेगा, और चला जाता है। इस सृष्टि में अब सबकी पालना अपने आप होती है। हाँ, हमारा कर्तव्य है वो अलग बात है, पर ये समझना अपने मोह को कर्तव्य का नाम नहीं देना है। और सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का, धृतराष्ट्र कहता है दुर्योधन मेरा पुत्र है, वो कहता है अगर मैंने उसे राज्य नहीं दिया तो आत्महत्या कर लूंगा, क्या मैं पिता होकर अपने बेटे को आत्महत्या करने दूं? क्या मेरा पिता के रूप में कोई कर्तव्य नहीं है मेरे बेटे के प्रति? विदुर से कहता है दुर्योधन धृतराष्ट्र। तो विदुर एक बहुत अच्छी पावरफुल बात कहता है जो लिख के रखनी है डायरी में। विदुर कहता है महाराज, दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। जिसे आप कर्तव्य कह रहे हो, कर्तव्य नहीं है, वो रोग है। कर्तव्य पूरा हो गया, उसको पाला बोसा शिक्षा दी बड़ा किया, अब भी समझ रहे उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा है, जो होगा होगा, आप हट जाओ। तो कौन सा मोह है, कौन सी बात है, कौन सी एडिक्शन, कौन सा संस्कार है जिसने संस्कारों को भारी कर दिया है? अगर वो मोह है, हटा दो उसको। और मोह से मुक्त होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, काम से भी मुक्त होने से भी बड़ा पुरुषार्थ है मोह से मुक्त होना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इतनी छोटी छोटी वस्तुएं में मोह है, ऐश, रुमाल में मोह, पॉलिथीन में मोह, एक चम्मच यदि गुम हो गया तो बेचैनी हो जाती है घर पर, चम्मच में भी मोह है। अगर हम अपनी मोह की लिस्ट निकाले तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो बेचैन कर देती है। तो तीसरा है बुद्ध संस्कार, अगला है संबंध। संबंध भारी क्यों होते हैं? दो व्यक्ति ए और बी, आ और बा, दोनों के संबंधों में भारीपन है क्यों? संस्कारों का टकराव, अहंकार, कड़वेस, कटुस, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बोलता कुछ है, वो समझता कुछ है। और ऐसा कहा गया है व्हाट्सएप ने जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है उतनी और कभी किसी ने नहीं की थी। उधर से व्यक्ति लिखता कुछ है, पढ़ने वाला कुछ और समझता है। टकराव, युद्ध, संस्कार, संस्कार संबंधों में मिठास। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आती थी, वो कहती थी यहां दर्द होता है, यहां चेस्ट पेन, लेफ्ट साइडेड, ईसीजी किया, एंजियोग्राफी किया, सब कुछ किया, सब नॉर्मल, फिर भी कहती थी यहां पर दर्द होता है। कब होता है? चलती हो, दौड़ती हो, ढलान पर, तब नहीं। कब दर्द होता है? एक आत्मा है, जैसी आंखों के सामने आती है इधर दर्द चालू हो जाता है। वो जब नहीं रहती है तब ठीक, जैसे ही सामने आती है वो, इधर एकदम दर्द उठता है जोर से। कौन सा दर्द है? इसका क्या ट्रीटमेंट करें? एंजियोग्राफी करें, एंजियोप्लास्टी करें, बाईपास करें, क्या करें? इतनी घृणा भरी है एक आत्मा के प्रति कि जैसे ही सामने आती है बेचैनी होती है, वो नहीं चाहिए, हटाओ उसको। दो व्यक्ति एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में, एक ही सेवा केंद्र, एक ही जगह पर बनती नहीं है। वो उधर से आया तो इधर, हम उधर वो उधर, कोल्ड वॉर। क्यों? संबंध भारी हो गए, शायद एक दूसरे को माफ नहीं किया है, शायद एक दूसरे के अवगुण देखने की ही दृष्टि है। यू कैनॉट स्टैंड अदर पर्सन, बिल्कुल वो हट जाए यहां से। शिव बाबा इसको हटाओ, बाबा इसको हटा दो, फिर देखना योग का चार्ट कैसे बढ़ता है। एक सूफी संत एक गांव में गया भाईजीत, और एक जगह रहने लगा, और उसका जो पड़ोसी था वो सारा अपना किचड़ा उसके घर में फेंक देता है, कभी गालियां देता, कभी कुछ करता, सारे दिन भर उसको परेशान करते रहता है। ये सूफी संत जिसने कभी भगवान से कोई, अल्लाह से कभी कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं की, पहली बार अल्लाह से कहता है खुदा इस बंदे को यहां से हटा दे, इसका कुछ कर, नहीं तो मैं यहां रह नहीं सकूंगा। भगवान कहते हैं तुम चार दिन में परेशान हो गए, ये मैं इसका 40 साल से पड़ोसी हूं, मैं इसका 40 साल से पड़ोसी हूं और तुम चार दिन में थक गए। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा बच्चों और बाप में एक अंतर है, वो अंतर कौन सा है? यदि किसी में 9 गुण हो और एक अवगुण हो तो बच्चे उस अवगुण को देखते हैं, और बाप यदि किसी में 9 अवगुण है और एक गुण है तो बाप उस गुण को देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी है? अवगुणी, दोष देखने की दृष्टि। इसलिए संबंधों में टकराव है। एक बार टीचर बहनों की भट्टी थी बहुत पहले, तो दादी प्रकाशमणि ने सभी टीचर बहनों को काम दिया था कि आपके सेंटर पर जो दूसरी बहन है उसके 25 गुण लिखो। इतना मुश्किल हो गया था सबको गुण लिखना। अगर हमसे कोई कहे कि हमारे जो घर में है उसके 25 अवगुण लिखो, कितने लिखेंगे? 50। तुरंत फास्ट, इनने टूटता है, इसको ये नहीं आता है, बोलने का ढंग नहीं है, मैनर्स कम है, कितने फटाफट फटा। और कहे गुण लिखो तो अरे बाप रे, इसमें तो भक्ति मार्ग में कहा था मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान मार्ग में इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, उल्टा हो गया। जिस व्यक्ति के प्रति मन में घृणा है, अमृत वेले उस व्यक्ति को सामने लाना और उसके गुणों का चिंतन करना। क्या करना है? जिस व्यक्ति के प्रति सम्मान कम है, क्यों सम्मान कम है? क्योंकि हमने उसको हमेशा देखा है आगे आगे करते हुए, कुछ और करते हुए, झूठ बोलते हुए, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, उनमें दो तीन गुण तो हमेशा है। सबसे पहला भगवान को पहचाना है। कितनी भी अवगुणी हो पर उसने क्या किया है, भगवान को पहचाना है, फोटो में कोई है। दूसरा पवित्रता को धारण किया है, मनसा वाचा कर्मणा। तीसरा तन मन धन कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित किया है बाबा के आगे। इस ब्राह्मण परिवार में आई है, कम से कम ज्ञान तो सुनती है, ज्ञान को तो समझती है, इसलिए वो महान है। तो संबंधों को कैसे बनाना है, मधुर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अक्टूबर मास की अव्यक्त वाणी है 2010, डबल फॉरेनर से मुलाकात। बाबा ने कहा है माया के दो रूप है, एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है मैं राइट हूं। मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो, पहले मानो कि तुम रॉन्ग हो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, यही झगड़े का कारण है। व्यक्ति एक ही घर में पति और पत्नी झगड़ा, एक ही ऑफिस में दो साथी झगड़ा, एक ही जगह पर दो बहनें झगड़ा, दो भाई झगड़ा, दो मित्र झगड़ा, कारण क्या है, अहंकार। इंग्लिश में कहते हैं इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। इसके लिए हार जाओ, जीतने दो सम आगे वाले को। तो संबंध में हल्कापन, नहीं तो संबंध में इतना भारीपन है, इतना भारीपन है कि योग ही नहीं लगता। जैसे एक सेंटर पर एक भाई ने दूसरे भाई से एक बार पैसे मांगे 5,000 रुपए, बहुत अर्जेंट काम है और पैसे लिए, और लेने के बाद भूल गया कि मुझे वापस देने हैं, और जिसने पैसे दिए अब उसको दिन रात चिंता, ये पैसे कब देगा, ये पैसे देता ही नहीं, ये पैसे देता ही नहीं, बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। और मुरली क्लास में आता है तो वो भाई सामने ही आके बैठ जाता है, उधर शिव बाबा दिखता है, इधर 5,000, उधर शिव बाबा, इधर 5,000, बाबा इसको टचिंग कराओ, इसको टचिंग कराओ, कुछ तो करो, ये देता ही नहीं पैसे, पैसे क्या दे दिए और फंस गए। संबंध बिगड़ने की बात आ गई, अंदर ही अंदर निगेटिव चिंतन चल रहा है दिन रात उसके प्रति। फिर उस भाई ने बताया मधर कुमारों की भट्टी थी मधुबन में, तो मधुबन में आया और फिर बाबा से कहा जो भी है मैं क्या करूं, पागल हो गया हूं, 5,000 5,000 घूम रहे दिन रात। बाबा से कहा अब मैं इस पैसे को छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ले लिए उसने, हिसाब था मेरा पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब जाके हल्का हुआ मधुबन जाके, और जब 3 दिन के बाद, 3 दिन मोबाइल बंद करके रख दिया था, भट्टी थी तो अधर कुमारों की, 3 दिन के बाद जब मोबाइल खोला तो उसी भाई का उधर से फोन आ गया। वो कह रहा है मैं 3 दिन से तुमको फोन लगा रहा हूं, क्या हुआ, कहां हो, वो मुझे पैसे देने थे ना। तो जब हल्का हो गए तब कहीं उसको टचिंग हुआ उधर, तब तक नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा पैसों की ज्यादा लेन देन नहीं करो, हां अगर करो तो ऐसे दे दो कि ये मत समझना कि ये वापस दे, दे दिया भूल जाओ देकर, नो एक्सपेक्टेशंस कि मुझे वापस भी दे, दे दो और खत्म। अगर देना भी है तो, हम ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात कर रहे हैं, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण, किसी किसी को बहुत जरूरत पड़ जाती है कभी कभी तब। तो चौथा है संबंध, पांचवा है बोल। हमारे बोल कैसे हो, बहुत मीठे हो, कम हो, थोड़े हो, सुखदाई हो, प्रेरणादायक हो, और हमारे बोल में क्या हो, क्या हो, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, क्या हो, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस। बाबा के महावाक्य है जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। कैसे बोल हो? जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। और भारी करने वाले बोल कौन से हैं? भारी करने वाले टॉन्ट, निंदा, अपमान, कमेंट्स, नमक छिड़कना और बहुत खुशी होना दूसरों की निंदा करके, निंदा सुख। ये बोल क्या करते हैं? आत्मा को भारी कर देते हैं। ऐसे बोल हमारे मुख से ना निकले जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर दे। और बोल के पीछे क्या है? भावनाएं। अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे तो अपने आप बोल शुद्ध और पवित्र होंगे। भावनाओं में घृणा भरी है तो बोल अपने आप घृणा वाले निकलेंगे। तो बोल भी कैसे हो? डबल लाइट। उसके बाद में जो एक टॉपिक है, भोजन, जिसकी सुबह भी हमने चर्चा की, दोबारा नहीं करेंगे। भोजन भी कैसा हो? योगी का हल्का। उसके बाद है कर्म। भारी करने वाले कर्म कौन से? देहभान में जो कुछ कर्म किए जाते हैं सब भारी करने वाले। मनमत पर जो भी कर्म किए जाते हैं भारी करने वाले। परमत पर जो कर्म किए जाते हैं भारी करने वाले हैं। स्वार्थवश जो कर्म किए जाते हैं भारी करने वाले। अटैच होकर जो कर्म किए जाते हैं, मेरी सेवा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मेरा, भारी कर देते हैं आत्मा को। इसके लिए कर्म कैसे हो? हल्के। कर्म किया निस्वार्थ, निष्काम, भूल गए क्या किया वो भी पता नहीं। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम भगवान के पीछे। तो ऐसे कर्म हो तो कर्म में भी क्या हो? हल्कापन। उसके बाद है दृष्टि। दृष्टि में हल्कापन। अवगुणी दृष्टि भारी बना देती है। तो इतनी सारी बातें हैं जिसमें क्या रहना है? लाइट, हल्का। और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हो सकती है, जैसे योग। योग में हल्कापन। हमारे ओपीडी में कुछ कुछ पेशेंट आते कहते हैं ज्यादा योग करने के बाद दिमाग भारी हो जाता है। क्या कहते हैं? ज्यादा योग जब करते हैं ना, एकदम भारीपन होता है। उसकी कोई दवाई होगी तो दो। योग से भारीपन। ये कैसा योग है जो भारी कर देता है आत्मा को? योग अर्थात जिससे हल्कापन आए। ये तो उल्टा ही हो रहा है, शायद योग को समझा नहीं। इसके लिए बाबा ने तो मुरलियों में कहा योग शब्द का प्रयोग ही नहीं करो, याद शब्द का प्रयोग करो। तो ऐसी हमको अपनी स्थिति कैसी बनानी है? डबल लाइट। किस किस में डबल लाइट? सबसे पहले बताया विचार, फिर संकल्प, उसके बाद बुद्धि, संस्कार, बोल, कर्म, दृष्टि, उसके बाद संबंध। ऐसी ये 5-6-7 बातें हैं जिसमें अपने आप को हल्का करते जाना है, हल्का करते जाना है, हल्का। और जो अभ्यास बताए, माफ करना, माफी मांगना और अध्ययन को बढ़ाना। सभी करेंगे आज से ये काम, ठीक है? और सुबह की क्लास में माताओं को काम दिया था भोग लगाने का। और जो जो अमृत वेला कल से नियमित करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, एक बात याद रखना, ये इंद्र सभा है, धर्मराज की अदालत है। यहां पर हाथ खड़ा किया और नहीं किया तो बाबा ने कहा है तो मैं एक एक पर केस कर दूंगा। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा मैं क्या करूंगा? उस पर केस ठोक दूंगा। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा एक को भी नहीं छोड़ूंगा, गिन गिन के हिसाब लूंगा। तो ये इंद्र सभा है। इंद्र सभा में प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए रोज डेली मुरली स्टडी करना है, अध्ययन करना है, और दूसरा स्वाध्याय यज्ञ का जो लिटरेचर है उसकी पढ़ाई करनी है। अगला बताया टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कईयों को आदत है लंबी लंबी बातें, इधर की बातें उधर की बातें, ऐसी बातें वैसी बातें। और फिर बताया माफ करना और माफी मांग लेना, और संबंधों को मीठा बनाने के लिए अहंकार को नीचे कर देना। उस दिन जयंती बहन बता रहे थे कि संसार में जितने झगड़े हैं उसका कारण है टोन ऑफ वॉइस, किस टोन से शब्द कहे गए, क्या कहा गया वो नहीं, टोन क्या था कहने का, उससे अधिक से अधिक झगड़े होते हैं। तो ऐसे अपने आप को डबल लाइट बना देना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक बार, और फिर दोपहर का सत्र होगा, अलर्ट होके स्थिर बैठ जाएंगे, और अगले 3 से 4 मिनट सुबह से अब तक क्या क्या सुना, सभी आंखें बंद करेंगे, और इन सारी बातों में मेरे जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे करनी है, इसका संपूर्ण मौन में 3 से 5 मिनट तक चिंतन करेंगे। ओम शांति।